بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے جاسوسی دنیا ناول نمبر 109 بھیڑیے کی آواز، مصنف ابن صفی، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1،
جلد نمبر 37، ناول جاسوسی دنیا. ناول نگار ابن صفی. کہانی نمبر 109 بھیڑیے کی آواز. کہانی نمبر 110 اجنبی کا فرار. کہانی نمبر 111 روشن یولا. کہانی نمبر 112 زرد فتنہ. اسرار پبلیکیشن، الکریم مارکیٹ، مین کبیر سٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7357022 7321970. جملہ حقوق محفوظ. اس ناول کے نام، مقام، کردار اور کہانی سے تعلق رکھنے والے اداروں کے نام فرضی ہیں. پبلشر خالد سلطان. پرنٹر یمانی پریس. سیل ڈپو عثمان ٹریڈر، الکریم مارکیٹ، مین کبیر سٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7321970. جاسوسی دنیا نمبر 109 بھیڑیے کی آواز. مکمل ناول. پیش رس. بھیڑیے کی آواز ملاحظہ فرمائیے، میں نے پچھلی کسی کتاب کے پیش رس میں غیر ملکی ایجنٹوں کی ایک حرکت کی طرف اشارہ کیا تھا، یعنی وہ افواہیں پھیلاتے ہیں، ایسی افواہیں جو ہمارے قومی شیرازے کو منتشر کر سکیں. صوبائی عصبیت کا پرچار اس کا واحد ذریعہ ہے، لہذا ہر ایسی افواہ کو اپنی ذات سے آگے نہ بڑھنے دیجیے جس میں صوبائی عصبیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اس پر ایک صاحب نے مجھے لکھا ہے، جہاں دو چار مل بیٹھتے ہیں وہاں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی صاحب کوئی ایسا قصہ سناتے ہیں جس میں ایک صوبے کے فرد پر کسی دوسرے صوبے کے آدمی کی زیادتی کا ذکر ہو تو آپ اسے افواہ سازی کس طرح کہیں گے جبکہ وہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہو. ان صاحب کا خط طویل ہے لیکن یہ ٹکڑا خصوصیت سے جواب طلب ہونے کی بنا پر میری توجہ کا مرکز بنا. گزارش ہے کہ واقعہ سنانے والے کو آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی یہ تو سمجھا ہی سکتا ہے کہ وہ دو صوبوں کی بجائے دو نالائق پڑوسیوں کی بات کریں، دو نالائق بھائیوں کی بات کریں جو وقتی غصے کے تحت ایک دوسرے کو قتل کر دینے پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں. ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والوں کو میں نے آپس میں کٹتے مرتے دیکھا ہے. آپ دو صوبوں کی بات لیے پھرتے ہیں، لہٰذا ایسے واقعات کو صوبائی رنگ دینا دانش مندی نہیں ہو سکتی. ابن صفی، 4 جنوری 1971. لڑکی کی گراہٹ. وہ ایک معمولی سی شام تھی لیکن کیپٹن حمید کے لیے بے حد حیرت انگیز تھی. حیرت انگیز یوں تھی کہ اسی شام کو ایک حیرت انگیز فرض اسے سونپا گیا تھا. ویسے تو یہ بات بجائے خود حیرت انگیز معلوم ہوگی کہ حمید جس کا سابقہ ہی حیرت انگیزیوں سے رہتا تھا اس کے لیے حیرت انگیزی کوئی معنی رکھتی ہو، لیکن یہ معاملہ محض اس لیے اس کی نظروں میں خاصی اہمیت رکھتا تھا کہ مضحکہ خیز تھا. اب اسے مضحکہ خیز ہی نہ کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ اس کا محکمہ شادی بیاہ اور بردکھاوے وغیرہ میں دلچسپی لینے لگا تھا. اسے کسی کا یہ شعر یاد آ رہا تھا اس وقت، خفیہ پولیس خانہ دل میں چھپی نہ ہو، تیر نظر چلائیں ذرا دیکھ بھال کر. ایک صاحبزادے اس کے حوالے کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ وہ بردکھاوے میں جا رہے ہیں، اسے ان کے رفیق کی حیثیت سے ساتھ جانا پڑے گا. یہ حکم محکمہ سپرنٹنڈنٹ کی طرف سے ملا تھا، اور اس سے کہا گیا تھا کہ اس سلسلے میں بقیہ احکامات روانگی سے قبل ریلوے اسٹیشن پر مل جائیں گے۔ بردخاوے میں جانے والے نوجوان کو کاغذی طور پر اس کے حوالے کیا گیا تھا، ابھی تک اس نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے گھر پہنچا لیکن کھانے کی میز پر فریدی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ فریدی آج صبح ہی صبح کہیں چلا گیا تھا، ناشتے پر بھی اس کا ساتھ نہیں ہو سکا تھا۔ اب اسے بقیہ احکامات کا انتظار تھا کیونکہ 5 بجے شام کو ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا ضروری تھا، خالی ہاتھ نہیں بلکہ سامان سفر کے ساتھ۔ 4:30 بجے تک وہ بڑی بے چینی سے فریدی کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کی واپسی نہ ہونی تھی نہ ہوئی۔ پھر وہ شدید ترین جھنجھلاہٹ کے عالم میں گھر سے ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسے اس کی فکر بھی نہیں تھی کہ اسٹیشن پر اس نوجوان سے ملاقات کی کیا صورت ہوگی، کون تعارف کرائے گا۔ یہ تو معلوم تھا کہ نصیر آباد جانا ہوگا۔ وہ فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں داخل ہوا، یہاں 8 افراد پہلے سے موجود تھے۔ وہ ایک خالی کرسی پر جا بیٹھا اور ایک ایک کا بغور جائزہ لینے لگا۔ ان میں کوئی بھی بردخاوے کے معیار پر پورا نہ اتر سکا، 8ھوں معمر تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ ایک قوی الحبسہ بوڑھا آدمی اسے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے لیکن چہرے پر جوانوں کی سی توانائی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹرین کی آمد کی اطلاعی گھنٹی بجی اور وہ بوڑھا آدمی حمید کو گھورتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ ٹھیک اسی وقت اس کے اپنے محکمے کا ایک آدمی ویٹنگ روم میں داخل ہوا۔ یہ سپرنٹینڈنٹ کا پی اے تھا۔ اس نے حمید کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسی بوڑھے کی جانب اشارہ کر کے الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ حمید نے طویل سانس لی، ہوں تو یہ بوڑھا کھوسٹ جا رہا ہے بردخاوے میں اور اسے اس کی رفاقت کرنی پڑے گی۔ اس نے سوچا، برخوردار تم بھی کیا یاد کرو گے، اگر اس رفاقت کی یادیں تمہیں زندگی بھر نہ تڑپائیں تو صحیح۔ بوڑھے کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھ گیا اور پھر اس کے پیچھے ہی پیچھے ویٹنگ روم سے نکل کر پلیٹ فارم پر آیا تھا۔ گاڑی ابھی نہیں آئی تھی۔ بوڑھا پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ حمید ٹہلتا رہا لیکن بوڑھے کو ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ ایک جگہ اچانک سارجنٹ رمیش سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اور ایک لفافہ تھما کر رخصت ہو گیا۔ ایک سوٹ کیس وہ خود ساتھ لایا تھا، پھر اس دوسرے سوٹ کیس کی کیا ضرورت تھی۔ لفافے پر اس کا نام تحریر تھا اور رائٹنگ فریدی کی تھی۔ اس نے لفافہ جیب میں ڈال لیا اور اسی جگہ واپس آ گئے جہاں اپنا سوٹ کیس رکھا تھا۔ اتنے میں ٹرین آ پہنچی۔ بوڑھے نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ایک ایئر کنڈیشن کوپے کے سامنے آ رکا۔ پھر حمید نے اسے اس میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہا اور اب اس نے جیب سے لفافہ نکال کر چاک کیا۔ تحریر فریدی ہی کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، سپرنٹینڈنٹ کی خواہش ہے کہ تمہیں تنہا کام کرنے کے بھی مواقع دیے جائیں۔ اس سوٹ کیس میں میک اپ کا سامان ہے، خود اعتمادی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ حمید نے طویل سانس لی اور ہاتھ پھاڑ کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور خود بھی اسی کوپے کی طرف بڑھا۔ لیکن اس کے پاس نہ تو ریزرویشن کی رسید تھی اور نہ ٹکٹ تھا۔ وہ کوپے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سپرنٹینڈنٹ کا پی اے پھر دکھائی دیا جو ٹرین کنڈکٹر کے ساتھ اسی طرف آ رہا تھا۔ ٹرین کنڈکٹر نے قریب پہنچ کر حمید سے کہا، میرے ساتھ تشریف لائیے جناب، اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ اسی 3-سیٹر کے کوپے میں داخل ہوا تھا۔ بوڑھا اپنی سیٹ پر نیند دراز نظر آیا۔ کنڈکٹر دوسری سیٹ کی طرف اشارہ کر کے باہر چلا گیا۔ حمید نے سیٹ پر بیٹھتے وقت سرہانے لگے ہوئے کارڈ پر نظر ڈالی تھی جس پر تحریر تھا، نواب زادہ ساجد حمید۔ اس نے برا سمو بنایا اور بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا۔ دفتن بوڑھا ہنس کر بولا، میں نے آپ کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا یور ہائینس۔ क्या मतलब हमीद का लहजा सख्त था। मैं आपके खानदान का पुराना नमकवार हूँ। आपके दादा हुजूर एतमादुल दौला की खिदमत मेरे बाप ने की थी। एतमादुल दौला, बस फिलहाल खामोश रहिए, ट्रेन को चलने दीजिए, फिर इत्मीनान से गुफ्तगु होगी। मैं आपके वालिद हुजूर का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस हद तक एतमाद किया। तारुफ हासिल करने का ये एक घटिया तरीका है। हमीद गुर्राया, बूढ़ा मुस्कुराकर खामोश हो रहा। वैसे उसकी गुफ्तगू ने हमीद को उलझन में डाल दिया था। इतने में एक शोला जवाला जीन और जैकेट में मलबूस कूपे में दाखिल हुई। उसके पीछे कुल्ली सामान उठाए हुए अंदर आया था। लड़की ने उचटती सी नजर उन दोनों पर डाली और सामने वाली बर्थ पर बैठ गई। कुल्ली उसका सामान रख चुका तो उसने पर्स से 5 का एक नोट निकाल कर कुल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कीप दी चेंज। जी मैम साहिबा, बाकी पैसा तुम रख लो, वो झल्ला कर बोली, जाहिल इतनी भी अंग्रेजी नहीं समझ सकते। सलाम मैम साहब, कुली ने बड़े अदब से उसे सलाम किया और बाहर निकल गया। तीखे नकूश वाली उस लड़की ने हमीद को सिचुएशन से बेगाना कर दिया। वो अपनी उलझन को पसे पुश डाल कर पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जो हो गया था। दफतन बूढ़ा आदमी खखारा और हमीद चूं कर उसे देखने लगा। बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसे तासुरात थे जैसे वो उसे उस दिलचस्पी से बाज रखना चाहता हो। क्या बात है, हमीद ने बूढ़े को अंग्रेजी में मुखातिब किया और लड़की बेसाख्ता हंस पड़ी। दोनों की नजरें मिली और लड़की ने बड़ी झट्टाई से कहा, क्या तुम अपने जाहिल ना होने का सबूत पेश करना चाहते हो। क्या मतलब, हमीद ने बिगड़े हुए मूड का मुजाहरा किया, क्या यही बात तुम उर्दू में नहीं कह सकते थे। मैं अजनबियों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं करता, हमीद बदखलाकी पर उतर आया। अचानक बूढ़ा दखल अंदाजी कर बैठा। उसने लड़की से कहा, मोहतरमा बराहे करम बात न बढ़ाइए, प्रिंस की खुशमिजाजी उनकी बेहतर सेहत के लिए जरूरी है। प्रिंस, लड़की की आंखें हैरत से फैल गईं और इतने में गाड़ी भी चल पड़ी। लड़की चंद लम्हे हमीद को अजीब नजरों से देखती रही और फिर इस तरह झुक झुक कर हमीद को देखने लगी जैसे बूढ़े के बयान की तस्दीक करने के लिए किसी खास अलामत की तलाश में हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है, हमीद भुन्नाकर उठता हुआ बोला। नहीं शहजादे साहब, तुम्हारी सेहतियाबी के लिए खुश मिजाजी जरूरी है, लड़की हंस पड़ी। मोहतरमा मोहतरमा, बूढ़ा आदमी मुस्कुराना अंदाज में बोला, क्या मोहतरमा मोहतरमा कर रहे हो, खेचो जंजीर। हमीद धाड़ा, हम इस नामाकुल ट्रेन से सफर नहीं करेंगे। ऐसा भी क्या शहजादे साहब, ये अकबर आजम का जमाना नहीं है, लड़की बदस्तूर हंसती रही। खुदा के लिए मोहतरमा, बूढ़ा गिड़गिड़ाया, खेचो जंजीर और उतार ले जाओ अपने शहजादे साहब को, मैं अपने आस पास किसी नकचड़े आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कैसी नासमझी की बातें कर रही हैं, बूढ़े ने कहा, मुझे तुम्हारी मौजूदगी पर एतराज नहीं है, लड़की ने मुड़कर नरम लहजे में कहा, सिर्फ अपने शहजादे साहब को लीकेज कैरियर या डाक कैरियर में बंद करा दो। डाक कैरियर में ऐसी आला नस्ल की कुतिया कहाँ मिलेगी, हमीद बोला। तो तुम यहीं भोगते रहोगे, लड़की ने बेबसी से कहा और अपनी बर्थ पर जा बैठी। हमीद सोच रहा था सफर अच्छा गुजरेगा। उसने तंबाकू की पाउच निकाली और पाइप में तंबाकू भरने लगा। तुम कारीडरिया बाथरूम में तंबाकू नोशी करोगे, यहाँ नहीं, लड़की फिर बोल पड़ी। भोंकती रहो, मैं आदी हूँ इसका, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी, मेरे बाप रेलवे में सबसे बड़े ऑफिसर हैं। ओहो, तो क्या इस महकमे में यतीम खाने भी हैं? प्रिंस खुदा के लिए आप ही खामोश रहिए, बूढ़ा बोला। मुनासिब ये होगा कि तुम हम दोनों को तनहा छोड़ दो। बहुत बेहतर जनाब, मैं डाइनिंग कार में जा रहा हूँ, बूढ़े ने बर्थ से उठते हुए कहा। मैं भी चल रही हूँ। तुम चली जाओगी तो फिर जंजीर कौन खींचेगा, हमीद ने तंजिया लहजे में पूछा। ये भी दुरुस्त है, बूढ़े ने पुरतपक्कर लहजे में कहा। क्या दुरुस्त है, लड़की ने सवाल किया। आप भी चली गई तो प्रिंस तनहा रह जाएंगे, ये भी इनकी सेहत के लिए मुजर है। तो क्या मैं तुम्हारे प्रिंस के बाप की नौकर हूँ, वो झल्ला कर बोली। इंसानी हमदर्दी मोहतरमा हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, आप मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकती। अभी अभी मैंने आपके चेहरे में यूनान की साइकी की झलक देखी थी, अब मैं आपका एहतराम करूंगा। मुझे तो तुम दोनों ही फ्रॉड मालूम होते हो। जी नहीं, सिर्फ मैं फरहाद हूँ, हमीद ने बूढ़े की तरफ देखकर कहा। इनकी उम्र अब इस काबिल नहीं रही, तुम सचमुच बहुत बदतमीज हो। मोहतरमा मोहतरमा, बूढ़ा गिड़गिड़ आया, मैं कंडक्टर के पास जा रही हूँ। मुझ जैसे जी इज्जत आदमी को छोड़कर हमीद ने सवाल किया, लेकिन वो मजीद कुछ कहे बगैर बोगियों को मिलाने वाले दरवाजे से निकल गई। योर हाईनेस, खामोश रहो और बैठ जाओ, हमीद धाड़ा, और अब मुझे बताओ कि एतमादुद्दौला के बेटे का क्या नाम है। हुजूर हुजूर, क्या आप अपने वालिद हुजूर का नाम नहीं जानते? हम अगर इतने बेखबर ना हो तो प्रिंस क्यों कहलाएं? नवाब इक्तदारुल दौला जनाब, और हम सिर्फ साजिद हमीद हैं, हम कोई दौला क्यों नहीं, आप तो दूल्हा हैं मेरे हुजूर। इस पर हमीद का माथा पूरे तौर ठंका था। तो क्या उसे बेवकूफ बनाया गया है? बड़े मियाँ सच सच बताओ तुम कौन हो, वरना उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। बूढ़े की आंखों में बदमजगी के आसार नजर आए और उसने जेब से अपना कार्ड निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। कार्ड पर तहरीर था, अब्दुल रऊफ समदानी, मैनेजर लक्की कारपोरेशन। फिर तुम दादा के नमकवार कैसे हुए, हमीद ने भुन्ना कर पूछा। मेरे बाप उनकी सरकार में मुलाजिम थे, मैंने कुछ दिनों तक आपके वालिद हुजूर की खिदमत की है, उसके बाद वहाँ से आबोदाना उठ गया था, बिजनेस लाइन में पड़ गया। मैं दरअसल इस कारपोरेशन का सबसे बड़ा हिस्सेदार भी हूँ। अपने वालिद हुजूर का ये खत लीजिए। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और हमीद की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, हम लोग बहुत ही खास मौके पर याद किए जाते हैं। हमीद ने लिफाफे से खत निकाला जिससे एक फोटोग्राफ फिसलता हुआ उसकी गोद में आ गिरा। ये खुद उसी का फोटोग्राफ था। खत में लिखा था, समदानी मियाँ, इस यकीन के साथ कि तुम्हें भी अपने बाप का अहद याद होगा, तुम्हें ये खत लिखा जा रहा है। हमारे अम नामदार के हुजूर हमको तुम्हारे वालिद ले गए थे, तुम हमारे लख्त जिगर को उसके चचा के पास ले जाओ। इफ्तिखारुद्दीन उसका नाम है, इसलिए तस्वीर भी भेजी जा रही है कि तुम उसे पहचान सको। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में वो तुम्हें मिलेगा कल शाम 5 बजे। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह हमारे दरमियान इस रिवायत को ता कयामत बरकरार रखे, आमीन। दुआगो इक्तदारुल दौला। खत पढ़कर हमीद ने कहकह लगाया और बोला, मेरे बाप का नाम चौधरी हमीद है, मुझे इलम नहीं कि इक्तदारुल दौला होने का शर्फ उन्हें कब हासिल हुआ। वल्ला खुशमिजाजी आपके खानदान का तोरा इम्तियाज है, बूढ़ा समदानी हंसकर बोला, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन तुम लोगों की वफादारी का भी जवाब नहीं। यही इज्जत अफजाई हमारी जानसारी का सबब रही है योर हाईनेस। तो हम दूल्हा हैं? यकीनन योर हाईनेस, लेकिन हमारे वालिद हुजूर ने तो हमें इसके मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। ये एन रिवायत के मुताबिक है, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम था, उनके साथ मेरे वालिद गए थे। गए होंगे, हमीद ने लापरवाही से शानों को जुम्बश देकर कहा। मुनासिब यही है कि आप भी ला इलम ही रहें। ला इल्मी मेरी जन्नत है, हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, जाओ उस लड़की को तलाश करो। ये मुनासिब ना होगा प्रिंस, हमारी तबीयत से मुनासिबत रखती है ये बात। आप बुर्दखावे के लिए जा रहे हैं, ये भी मलहूजे खातिर रहे। जब एक लड़की हमें नापसंद कर सकती है तो दूसरी भी कर देगी। हम इस सिलसिले में जरा अपना इत्मीनान कर लेना चाहते हैं। आप मुझे उलझन में डाल रहे हैं जनाबे आली। मिस्टर समदानी, आप सिर्फ समदानी कह सकते हैं, मिस्टर कहलवाने का शौक नहीं है मुझे। समदानी का लहजा किसी कदर नाखुशगवार था, लेकिन अंदाज खैर अंदेशाना ही था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद जा रहा हूँ उसकी तलाश में, तुम यहीं बैठो। आपकी मर्जी। हमीद उठ गया। ख्वाहिश चाय की भी महसूस हो रही थी। डाइनिंग कार तक पहुंचने के लिए उसे दो बोगियों से गुजरना पड़ा। सामने ही मेज पर लड़की नजर आई थी। वो बड़ी बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर उसके मुकाबले बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है, वो भुन्ना कर बोली। मेरा ख्याल है कि मैं अभी सिर्फ आकर बैठा हूँ, बदतमीजी में काफी देर लगेगी। शट अप, अंग्रेजी में बुरा नहीं मानता, अगर चुप बे कहती तो लाजमन मेरा हाथ घूम जाता। आदमी हो या प्रिंस हूँ, शिकल देखी है फ्रॉड कहीं के। कितनी बार कहोगी, तुम उठ जाओ यहाँ से, लोग मुझे अहमक समझेंगे। तुम तो सूरत ही से अहमक मालूम होते हो। तब तो लोग मुझे तुम्हारा शोहर समझेंगे, हमीद खुश होकर बोला। बकवास मत करो, और लोग तुम्हें झगड़ालू समझेंगे। तो मैं ही उठी जाती हूँ, बहुत ज्यादा बददिमाग बीवी समझकर लोग मुझसे हमदर्दी करेंगे। खुदा करे मर जाओ तुम, वो दांत पीस कर बोली। आइंदा किसी मर्द से छेड़छाड़ ना करना, हमीद उठता हुआ बोला और दूसरी मेज पर जा बैठा। लड़की के चेहरे पर पल भर के लिए हैरत के आसार नजर आए थे और फिर इस तरह मादूम होकर रह गए थे जैसे उसमें किसी कोशिश को दखल रहा हो। हमीद ने वेटर को इशारे से बुलाया और आहिस्ते से बोला, उन साहिबा से पूछो क्या पियेंगी। मैं नहीं समझा जनाब, वेटर कलेजा किसी कदर नाखुशगवार था, लेकिन हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए मैनिखेज मुस्कुराहट के साथ कहा, जन मुरीदी सफर में भी साथ नहीं छोड़ती, अभी अभी अचानक मुझसे खफा हो गई हैं। ओ मैं समझा जनाब, बहुत बेहतर, कहता हुआ वो लड़की की तरफ बढ़ गया। उसने बड़े अदब से झुककर लड़की से कुछ कहा था और लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। फिर वो हमीद को घूरने लगी थी, इतनी सख्ती से दांत भींचे थे कि जबड़ों की वरीदें उभर आई थीं। दफतन हमीद ने महसूस किया जैसे लड़की पर गशी तारी हो रही हो। कहर में डूबी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थीं। और फिर सचमुच उसकी गर्दन कुर्सी की पुश्तगाह पर ढलक गई। वेटर बौखलाकर हमीद की तरफ मुड़ा। कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, हमीद उठता हुआ बोला, इन पर दौरे पड़ते हैं अक्सर। उसके करीब पहुंचकर पेशानी पर उंगली से ठोके दिए, लेकिन उसकी आंखें ना खुली। आखिर उसने उसे हाथों पर उठाया और वेटर से कहा कि वो उसका वेंटी बैग उठा ले और उसके साथ कूपे तक चले। बूढ़े समदानी ने उन्हें इस हाल में देखा तो बौखला कर खड़ा हो गया। हमीद ने उसे बर्थ पर लिटाते हुए रिजर्वेशन कार्ड पर नजर डाली जिस पर खानजादी दुर्दाना तहरीर था। वेटर को 5 रुपए बतौर बख्शिश देते वक्त हमीद ने उसका शुक्रिया भी अदा किया और बूढ़े को आंख मार कर मुस्कुराया। वेटर के रुख्सत होने पर समदानी ने बौखलाए हुए लहजे में इस्तफसार हाल किया था, मेरा ख्याल है कि ये गुस्से की शिद्दत की बिना पर बेहोश हो गई है। हमीद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, लेकिन लेकिन जनाब तुम फिक्र ना करो, खुद ही होश में आ जाएगी, लेकिन तुम जरा इस पर नजर रखना कि जंजीर ना खींचने पाए। आपने बड़ी दुश्वारी में मुब्तिला कर दिया है जनाब, तुम कैसे साथी हो, हमेशा इज्जत की जिंदगी बसर की है मैंने, मुझ पर रहम फरमाइए। अचानक खानजादी दुर्दाना उठ बैठी और उसके हलक से अजीब किस्म की आवाजें निकलने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा है, बूढ़ा समदानी कपकपाती आवाज में बोला जैसे कोई भेड़िया गुर्रा रहा हो। टैक्सी ड्राइवर, लड़की का चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों में दरिंदगी थी और चमकदार दांत सचमुच किसी भेड़िये ही के दांतों से मुशाबे नजर आने लगे थे। हमीद ने जल्दी से अपना सूटकेस खोला, 410 बोर की दो नाली बंदूक निकाली और लड़की का निशान लेकर एक गोशे में खड़ा हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं जनाबे आली, बूढ़ा समदानी बुरी तरह कांप रहा था। खामोश रहो, जैसे ही ये तुम पर हमला करेगी मैं फायर कर दूंगा। फिर अचानक लड़की पर हंसी का दौरा पड़ गया और हमीद ने समदानी को आंख मार कर कहा, देखा तुमने, लड़की ने बर्फ से छलांग लगाई और हमीद के करीब पहुंचकर बोले, हाय कितनी नन्ही सी बंदूक है, जरा मुझे दिखाओ। लो जरूर देखो। उसने उसके हाथ से बंदूक झपटी और फिर भेड़िये ही की तरह गुर्राती हुई पीछे हटने लगे। उसने हमीद के दिल का निशाना ले रखा था, वो तो पहले ही घायल है। यहाँ का निशाना लो, हमीद ने अपनी खोपड़ी की तरफ इशारा करके कहा। लड़की के तेवर से मालूम होता था कि वो उन्हें कवर किए हुए जंजीर तक पहुँचना चाहती है। देखिए जनाब, समदानी हकलाया, मैं देख रहा हूँ, हमीद हंसकर बोला, बंदूक खाली है लिहाजा। दूसरे ही लम्हे में उसने न सिर्फ उसके हाथ से बंदूक छीन ली थी बल्कि उसे उसकी बर्थ पर झटक दिया था। बर्थ पर गिरकर वो उसे बुरा भला कहने लगी और समदानी हमीद के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। खुदारा रहम कीजिए, इस वक्त आप एतमादुद्दौला बहादुर की तरह खलंडरे नजर आ रहे हैं। एतमादुद्दौला दफतन लड़की उठ बैठी, उसकी आंखों में हैरत के आसार थे। जी हाँ, ये उनके पोते हैं, समदानी कपकपाती हुई आवाज में बोला। बकवास, वो तो मेरे दादा थे, लड़की भन्नाकर बोली। आखिर तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाना चाहते हो? आप खानजादी हैं, एतमादुद्दौला की औलाद नवाबजादा कहलाती है, समदानी जुजबुज होकर बोला। वो मेरे दादा के भाई थे। नहीं, समदानी उछल पड़ा, और इसीलिए मैंने चाहा था कि तुम लोग मुझसे ना उलझो। मेरे बाप को इलम हो जाए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका मतलब है कि खान जफरयाब हूँ तो तुम मेरे बाप के नाम से भी वाकिफ हो? अच्छा लड़की, अब बकवास बंद करो, हमीद पैर पटक कर बोला। हम किसी कदर गनूदगी महसूस कर रहे हैं। अगले स्टेशन पर तुम दोनों पुलिस की हिरासत में होगे। अगर आप खान जफरयाब की साहबजादी हैं तो, समदानी कुछ कहते कहते रुक गया। अब क्या कहना चाहते हो? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप खान जफरयाब की बेटी और खान दौरा की पोती हैं तो आपको इसका भी इलम होगा कि दोनों सिलसिलों के दरमियान ताल्लुकात की क्या नौयत है। मैं पूछती हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? ये खान दौरा की बड़ी बेटी के बेटे हैं, समदानी ने हमीद की तरफ हाथ उठाकर कहा। अगर ये सच है तो, वो हमीद को खूनखार नजरों से घूरती हुई खामोश हो गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दारुल हुकूमत में क्यों तशरीफ लाई थीं? समदानी ने पूछा, इसी खतरे के इम्कान का जायजा लेने के लिए। इसे आप खतरा समझती हैं? फूफी अम्मा बुजदिल थीं, ऐसा ना कहिए। वो फिर हमीद को घूरने लगी और कुछ देर बाद बोली, तो ये बेवकूफ आदमी हमारे घर जा रहा है। लेकिन ठहरो, इस घराने में साजिद हमीद नाम का कोई आदमी नहीं है। बुजदिल माँ का बुजदिल बेटा, वो नफरत का इजहार करती हुई बोली। इस बार हमीद भड़क उठा, उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे उसने सचमुच उसकी अपनी माँ को कहा हो, तुम जबान बंद करो वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। शट अप, हमीद उसकी तरफ बढ़ा ही था कि समदानी बीच में आता हुआ बोला, आप सब्र सुकून के साथ बैठ जाइए जिनाबे आली। मेरा ख्याल है कि खान जफरयाब की कोई दूसरी बेटी नहीं, तुम ठीक समझे बूढ़े हबीस। लड़की आपस से बाहर हुई जा रही थी। मैं इस खानदान का कदीम नमकवार हूँ, आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बूढ़े समदानी ने मुस्कुराकर कहा। लड़की फिर कुछ ना बोली। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे अपनी बर्थ की तरफ वापस आना पड़ा था। लड़की की आंखों में तनफर के साए गहरे होते जा रहे थे। बूढ़ा समदानी गिघियाने लगा, खानजादी साहिबा मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी मुलाकात इन हालात में हुई। खानदानी रिवायत के मुताबिक प्रिंस इफ्तिखारुद्दौला अपने चचा की हुजूर बाजियाबी के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। खान दौरा की गली के दरो दीवार शाहिद हैं कि एतमादुद्दौला की औलाद रिवायत की पाबंद रही है। लड़की कुछ ना बोली, वो उन दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं देख रही थी। दफतन हमीद बोला, खान दौरा, खान जफरयाब और गालिबन तुम्हारे भाई का नाम खान सामा होगा। शट अप, यू डर्टी सोइन, लड़की धाड़ी, आवाज बुरी नहीं है, हमीद ने समदानी की तरफ देखकर कहा। मैं दस्तपस्ता गुजारिश करूंगा, तुम खामोश बैठो, हमीद ने हुसीले लहजे में कहा। बेहतर यही होगा, लड़की भी समदानी को घूरती हुई बोली, मैं इस अहमक से बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहती हूँ, ये रिवायत के खिलाफ होगा, मैं लानत भेजती हूँ इस रिवायत पर, समझे? अब मैं इस सिलसिले में कतन कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मैं प्रिंस को खान जफरयाब की खिदमत में पेश करके अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगा। समदानी बोला। अब ये शख्स जिंदगी भर उनकी खिदमत में पेश नहीं हो सकेगा, लड़की ने कहा और उछल कर बर्फ से उठ गई। वो फिर बोगियों को मिलाने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। हमीद इस्तेफहामिया अंदाज में समदानी की तरफ देखने लगा। मैं क्या बताऊं प्रिंस, समदानी भराई हुई आवाज में बोला, खुद मेरी अक्ल चकरा कर रह गई है, सोच भी नहीं सकता था कि आप दोनों एक साथ सफर करेंगे। ओ चचा, जो कुछ भी कहना है एक ही बार कह जाओ, क्यों मुझे भी मकबूतल हवास कर रहे हो, हमीद पेशानी पर हाथ मार कर बोला। ये तर्ज तखातुब आपके शायान शान नहीं है। अच्छा तो मैं फिर जा रहा हूँ उसके पीछे। अब ये आपका फर्ज है कि अपनी मंगेतर की निगहदाश्त खुद करें। मंगेतर, क्यों हवा से बागता हो रहे हो बड़े मियाँ? आपकी तेज मिजाजी की बिना पर इक्तदार दौला बहादुर ने आपको असल मामले से लाइलम रखा होगा। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी पले बड़े हों, लेकिन आपकी शादी इसी दस्तूर के मुताबिक होगी जो सैकड़ों साल से आपके खानदान में चला आ रहा है। भला मैं दुनिया के किस हिस्से में पला बड़ा हूँ? फ्रांस में जनाबे आली। क्या आप मुझे इस कदर लाइलम समझते हैं? आप सिर्फ 5 साल के थे जब इक्तदार दौला ने आपको एक हमदर्द फ्रांसीसी के हवाले कर दिया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, हमीद बोला। और आप पिछले महीने तशरीफ लाए हैं। आपके अज़ा आपको इस वक्त तक नहीं पहचान सकते जब तक कि उन्हें आपकी शख्सियत से आगाह न किया जाए। कुदरती बात है, हमीद ने लापरवाही से शानों को जुम्बश दी। अब बायस तशवीश ये है जनाबे आली के साहिबजादी इधर क्यों तशरीफ लाई थीं और फिर तन्हा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि खान दौरा की औलाद इतनी आजाद ख्याल हो सकती है, तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं गई? मुझे अफसोस है कि इक्तदार दौला ने आपको हालात से इस हद तक बेखबर रखा। मुझे हालात की परवाह नहीं समदानी साहब, हर किस्म के हालात से निपटना मेरी हॉबी है, ख्वाह पहले से उनका इलम हो या ना हो, हमीद भाई आंख दबाकर बोला। जवाब में समदानी कुछ कहने ही वाला था कि दुर्दाना आंधी और तूफान की तरह कूपे में दाखिल हुए। तो ये हजरत मेरे मंगेतर हैं, वो हमीद की तरफ उंगली उठाकर बोली। डाइनिंग कार का वेटर भी सख्त नामाकूल वाक्य हुआ है, वो तो तुम्हें मेरी बीवी समझा था, हमीद बोला। तुम खामोश रहो, मैं उनसे गुफ्तगू कर रही हूँ, लड़की ने समदानी की तरफ इशारा किया। मुनासिब यही होगा मोहतरमा, समदानी ने कहा। इस बार उसका लहजा सर्द था। क्या तुम्हें अपने आका इक्तदार उद्दौला के बेटे की जिंदगी अजीज है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो फिर अगले स्टेशन पर उतर जाओ और वहीं से अपने शहर वापस चले जाना। जी नहीं, हमीद बोल पड़ा। अब तो अपने चचा हुजूर की खिदमत में जरूर पेश किया जाऊंगा, इससे पहले ही आपकी गर्दन कट जाएगी, लड़की भुन्ना कर बोली। इस पर हमीद ने समदानी की तरफ देखकर ठंडी सांस ली और सवाल किया, अब हमें क्या करना चाहिए अंकल समदानी? आप बुज़दिल तो नहीं है प्रिंस? मैं तुम्हें बजोर शमशीर हासिल करूंगा, हमीद ने लड़की को घूरते हुए कहा और अपने दाहिने बाजू की मछलियों पर हाथ फेरने लगा। मैंने आगाह कर दिया खतरे से, अब तुम जानो, लड़की ने कहा और बर्थ पर नींद दराज हो गई। समदानी हमीद के करीब आ बैठा और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, मैं सख्त उलझन में पड़ गया हूँ प्रिंस, पता नहीं ऐसे हालात में इक्तदार दौला बहादुर क्या करते। जाओ अपनी बर्थ पर जाओ, इस वक्त तुम इक्तदार दौला की हुजूर में नहीं हो, अब तुम्हें मेरे अहकामात का पाबंद रहना होगा, बजा इरशाद हुआ समदानी ने कहा और उठकर अपनी बर्थ पर जा बैठा। लड़की ने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसके नथने फूले हुए थे और चेहरा सुर्ख था, गालिबन अंदर ही अंदर खोल रही थी। हमीद ने सोचा खासी दिलचस्पी रहेगी, लेकिन आखिर ये है क्या चक्कर? महकमा सुराग रसानी के सुपरिंटेंडेंट को शादी ब्याह से क्या सरोकार? नवाब इक्तदार दौला का नाम उसने सुना था, कभी रहे होंगे नवाब, अब तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के चक्कर में पड़े हुए थे। कुछ भी हो मामला गंभीर मालूम होता है, हमीद सोचता और लड़की को घूरता रहा जो बदस्तूर आंखें बंद किए बर्थ पर नींद दराज थी। दफतन हमीद ने समदानी को इशारा किया कि वो वहाँ से चला जाए। उसने बिल्कुल मशीनी तौर पर उसके उस हुक्म की तामील की थी, इतनी आहिस्तगी से दूसरी तरफ चला गया कि लड़की को इलम ना हो सका। मोहतरमा, कुछ देर बाद हमीद ने उसे आवाज दी और वो आंखें खोलकर सीधी हो बैठी। क्या बात है, वो गुर्राई। गुजारिश है कि मुझे रिवायात से नफरत है, मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इस कदीम खानदानी रिवायत को तोड़ दूंगा। सचमुच दफतन लड़की का चेहरा खिल उठा। हाँ, लेकिन तुम्हें देख लेने के बाद मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया है। क्या मतलब? अगर अब मैंने इस रिवायत को तोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खूबसूरत होगे। शट अप, बुरा नहीं मानना। फ्रांस की बीवियां अपने शोहरों की पिटाई तक कर देती हैं और मैं उसी माहौल में पला बड़ा हूँ। इस ख्याल को दिल से निकाल दो कि मुझे हासिल कर सकोगे, लाशें गिर जाएंगी। क्या कोई जिन आशिक हो गया है तुम पर? मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। तुम कोई फ्रॉड हो जिसकी जिंदगी बचपन से अब तक फ्रांस में गुजरी हो। वो इतनी बामहावरा उर्दू नहीं बोल सकता। ये नामुमकिन नहीं है दुर्दाना बेगम। मैं जर्मनों के से लहजे में जर्मन बोल सकता हूँ और फ्रांसीसियों की तरह फ्रांसीसी। उर्दू का माहौल वहाँ तुम्हें कैसे मिला होगा? वो खातून जो मेरी अतालीक थी, उनका ससुराली सिलसिला नसब लखनऊ के एक मीर साहब से मिलता था। बकवास, मादाम पोंदरी मीर कहलाती हैं, उनके शोहर मीर तारिक अली उर्दू के एक बुलंद पाया अदीब हैं। अपनी उर्दू के लिए मैं उन्हीं का रहीन मिन्नत हूँ। मादाम पोंदरी मीर अक्सर कहा करती हैं कि शोहर की वजह से उनकी मादरी जबान चौपट हो गई है और वो फ्रांसीसी बोलते वक्त नूज, ओई अल्लाह और हाय मैं मर गई वगैरह कहने लगी हैं। लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी लहर नजर आई थी जिसका गला उसने फौरी तौर पर घोंट दिया। कुछ देर खामोश रहकर उसने कहा, मैं तुम्हें फिर समझाती हूँ कि हमारी गढ़ी में कदम भी ना रखना। अगर सच्चा हुजूर इस किस्म की कोई पाबंदी लगाए तो सर आंखों पर। अच्छी बात है, खुद भुगतोगे। ये जनाना बंदूक जो साथ लिए फिरते हो काम ना आएगी। मैंने 303 पर निशाने की मश्क की है। अरे वो 410 बोर तो मैं लड़कियों को खुश करने के लिए साथ रखता हूँ। इतनी छोटी सी बंदूक देखकर वो बेकाबू हो जाती हैं। हाँ, वो बुरा समूह बनाकर बोली, हमारे असलहा खाने में बांध बांध की बंदूकें और राइफलें हैं। मैं तोप से भी नहीं डरता, तुमसे शादी करके रहूँगा। बकवास बंद, मैं इस सिलसिले में अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। हमीद पाइप में तंबाकू भरने लगा। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था जैसे लड़की की बातों से जरा बराबर भी मुतासिर ना हुआ हो। कुछ देर बाद उसने पाइप का कश लेकर कहा, इक्तदार दौला बहादुर मुझे गोली मार देंगे अगर मैं चचा जफरिया की हुजूर पेशी से पहले ही भाग निकला। तुम अब्बा हुजूर तक नहीं पहुँच सकोगे। उन तक पहुँच जाने का मतलब ये होगा कि मेरी शिकस्त हो गयी। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? मैं अब तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारा दिल नहीं सुखाना चाहता। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम संजीदगी से सुनो तो मैं इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहो, मैं सुनूंगा। तुम अब्बा हुजूर के सामने पहुंचकर इनकार कर सकते हो, कह सकते हो कि तुम फ्रांसीसी लड़की से शादी करोगे, देसी लड़कियों से तुम्हारा निभा नहीं हो सकेगा। तदबीर तो ठीक है, लेकिन यकीन करो ए मेरी बिनते अम, तुम पर से दर्जनों फ्रांसीसी लड़कियां निसार की जा सकती हैं। इस बार उसने हमीद को बनावटी गुस्से से घूरा था लेकिन कुछ बोली नहीं। गाड़ी के बाहर अंधेरा फैल चुका था। थोड़ी देर बाद समदानी वापस आ गया और उसने दोनों ही पर मुतहयराना नजरें डाली क्योंकि वो अपनी अपनी बर्थ पर सुकून से नींदराज थे। लड़की अंग्रेजी का कोई रिसाला देख रही थी और हमीद पाइप के हल्के हल्के कश ले रहा था। नसीराबाद के स्टेशन पर उतरना था। रात के 9 बज रहे थे और 10 मिनट बाद वो नसीराबाद पहुंचने वाले थे। दफ्तर लड़की ने हमीद को मुखातिब करके कहा, मैं स्टेशन पर रुक कर रेल कार का इंतजार करूंगी। जिस डॉक्टर के लिए दारुल हुकूमत गई थी वो मेरे बाद रेल कार से रवाना हुआ होगा। डॉक्टर क्यों? अब्बा हुजूर के लिए वो अलील हैं। तो क्या हम भी ठहरेंगे तुम्हारे साथ? हरगिज नहीं, तुम दौरानगर जाओगे। स्टेशन पर बैठ टैक्सियां मौजूद होंगी लेकिन हम तो तुम्हारे साथ ही जाना चाहते हैं। नवाबजादा साजिद हमीद, ये नामुमकिन है, लड़की ने तल्ख लहजे में कहा। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं प्रिंस, वही कीजिए जो साहिबजादी कह रही हैं। समदानी बोल पड़ा। हूँ ठीक है, हमीद ने कहा और सख्ती से होंठ भींच लिए। ट्रेन की रफ्तार कम होती जा रही थी। लड़की अपना सामान इकट्ठा करने लगी। समदानी अपने और हमीद के सामान की देखभाल कर रहा था। दूसरी बात दफतन लड़की हाथ उठाकर बोली, अगर कोई भी रिसीव करने आए तो ऐसे बन जाना जैसे हम एक दूसरे के लिए कतई अजनबी हों। इससे हरगिज ना कहना कि तुम्हें भी दौरानगर जाना है और तुम लोग कौन हो। बहुत बेहतर मोहतरमा, समदानी ने बड़े अदब से कहा। ट्रेन रुक गई। वो नीचे उतरे। दुर्दानों को रिसीव करने कई आदमी आए थे। समदानी हमीद समेत अलग जा खड़ा हुआ। दुर्दाना उन लोगों से कुछ कह रही थी जो उसे लेने आए थे। फिर हमीद ने उन्हें वेटिंग रूम की तरफ जाते देखा। अब क्या ख्याल है जनाब समदानी साहब, हमीद ने ठंडी सांस लेकर पूछा। अब हमें बाहर चलना चाहिए जनाबे आली, दौरा नगर यहाँ से 15 मील के फासले पर है, टैक्सियां और बसें चलती हैं। रात इतनी खुशगवार है कि हम ऊंट गाड़ी पर सफर करना पसंद करेंगे। ऊंट गाड़ियां तो यहाँ नहीं होती जनाब, लिहाजा पैदल। ये आप क्या फरमा रहे हैं जनाब, मतलब ये कि 15 मील? ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए हम 15,000 मील भी पैदल चल सकते हैं। लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूँ जनाब, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? क्यों आप मुझे बूढ़े का मजाक उड़ा रहे हैं? मोहब्बत के बगैर भी पहाड़ सी जिंदगी गुजार आए हो। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, अगर पहले कभी इत्तेफाक नहीं हुआ तो अब ट्राई करो। वाकई आप मुझ बूढ़े का मजहका उड़ा रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि इकतदार दौला बहादुर इसे पसंद नहीं फरमाएंगे। वो बुजुर्गों का अदब करते हैं, ख्वाह वो उनके खादिम ही क्यों ना हो। इस बार समदानी कलेजा किसी कदर नाखुशगवार हो गया था। उसने झुककर अपना सूटकेस उठाया और दूसरा हाथ हमीद के सूटकेस की तरफ बढ़ाया ही था कि हमीद ने कहा, इस हद तक बूढ़ों का लिहाज जरूर करता हूँ कि उन्हें ज्यादा वजन ना उठाने दूँ। उसने खुद ही अपना सूटकेस उठाया और दोनों गेट की तरफ बढ़े। बाहर मुतअद्दिद टैक्सियां मौजूद थीं और टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल तांगे वालों के से अंदाज में आवाजें लगा रहे थे। हमीद ने देखा कि कई ड्राइवर उनकी तरफ झपटे हैं और जैसे ही वो करीब आए उसके हाथ पैर फूल गए और उस लंबे तड़ंगे ड्राइवर पर उसकी नजर जम गई जो दोनों हाथ बढ़ाकर उन दोनों से सूटकेस ले रहा था। दौरा नगर जज जाएंगे, हमीद हकलाया। बहुत बेहतर जनाब, मेरी गाड़ी आरामदेह साबित होगी, उसने नरम लहजे में कहा और वो दोनों उसके पीछे चल पड़े। उसने डिग्गी में उनके सूटकेस रख दिए और पिछली निश्चित का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। हमीद गिरता पड़ता टैक्सी में दाखिल हुआ था, समदानी ड्राइवर के बराबर अगली सीट पर जा बैठा। गाड़ी चल पड़ी और हमीद अपनी पेशानी का पसीना खुश्क करने लगा। टैक्सी ड्राइवर की पुश्त पर उसकी नजर जमी हुई थी क्योंकि ड्राइवर की वर्दी में ये कर्नल फरीदी था, मेकअप के बगैर। दूसरी गुर्राहट। हमीद के लिए ये पहला मौका था कि उसने फरीदी को मेकअप के बगैर किसी पेशेवर टैक्सी ड्राइवर के रूप में देखा। हालात कुछ भी रहे हों, लेकिन वो कोई अहम मामला ही हो सकता था जिसकी बिना पर फरीदी ने अपने तरीके कार में किसी हद तक तब्दीली की थी। हमीद अजीब सी घुटन में मुब्तला हो गया। समदानी की मौजूदगी शिद्दत से खुल रही थी। पता नहीं वो कौन था, उसकी मौजूदगी में फरीदी से गुफ्तगू नहीं कर सकता था। दफतन उसने समदानी से पूछते सुना, दौरा नगर में कहाँ तशरीफ ले जाएंगे जनाब? कसरे दौरा, ओहो, उसके बाद उसने फिर कुछ नहीं पूछा था। कसरे दौरा एक किला नुमा इमारत साबित हुई जिसके अजीमुशान फाटक पर दो मुसल्ला संतरी पहरा दे रहे थे। जैसे ही टैक्सी फाटक के करीब पहुंची, एक संतरी राइफल सीधी करके उसकी तरफ मुड़ा। टैक्सी उससे पहले ही रुक चुकी थी। संतरी करीब आया। कौन? उसने भारी आवाज में पूछा। हम खान के मेहमान हैं, समदानी ने जवाब दिया। डॉक्टर? नहीं मेहमान, हमें किसी मेहमान से मुतलिक इतला नहीं दी गई। खान अलील हैं, हम उनकी अयादत को आए हैं। जरा ठहरिए, संतरी ने कहा और फाटक की तरफ मुड़ गया। फिर वो अपने साथी से कुछ कहता हुआ अंदर चला गया था। समदानी ठंडी सांस लेकर बोला, समझ में नहीं आता ये इंतजाम। कैसा इंतजाम? हमीद ने पूछा। खान जफरयाब की देवड़ी में लफ्ज मेहमान खास अहमियत रखता था। मुलाजमीन बहस नहीं करते थे, मेहमान को खामोशी से मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाता था। किस सदी की बात कर रहे हैं जनाब? हमीद ने तंजिया लहजे में पूछा। 15-20 साल पहले की बात है जनाब, तब कोई जवान लड़की घर में ना रही होगी, कम अज कम फ्रांस में तो ऐसा नहीं होता। मुझे तो अब इजाजत दें जनाब, फरीदी ने समदानी से कहा, टैक्सी अंदर नहीं जा सकेगी, उनकी अपनी गाड़ी आपको यहाँ से ले जाएगी। मियाँ ऐसी भी क्या जल्दी? समदानी बोला, कम अज कम अंदर से जवाब तो आ जाने दो। साहब मैं माफी चाहता हूँ, कई बार पहरादारों से तकरार हो चुकी है। अच्छी बात है भाई, अमित ठंडी सांस लेकर बोला और जेब से पर्स निकाल कर मीटर रीडिंग की और कराया फरीदी के हाथ पर रख दिया। डिग्गी से उनका सूटकेस निकालते वक्त फरीदी ने एक छोटा सा पैकेट हमीद के हाथ में थमा दिया था। हमीद ने चुपचाप उसे जेब में डाल लिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने सूटकेस उठाए फाटक के सामने खड़े थे और टैक्सी जा चुकी थी। अब मुझे शिद्दत से भूख लग रही है जनाब समदानी साहब, हमीद बड़बड़ आया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ ऐसे हालात से दो चार होना पड़ेगा प्रिंस। क्या हालात दिगरगूं हैं? खुदा जाने मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। दफतन वो संतरी आता दिखाई दिया जो अंदर गया था, उसके साथ एक आदमी और भी था। संतरी फाटक पर ही रुक गया और दूसरा आदमी जच्चे तुले कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता चला आया। कहिए जनाब, उसने सवाल किया, हम खान की अयादत को आए हैं और हमें इक्तदार उद्दौला बहादुर ने भेजा है। ओह, वो आदमी गालिबन पसो पेश में पड़ गया था। किसी कदर हिचकिचाहट के साथ उसने कहा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं अभी हाजिर हुआ। वो तेजी से मुड़ा और फाटक से गुजरकर नजरों से ओझल हो गया। लाहौल वाला कुआ था, हमीद भुन्ना कर बोला, कम अज कम फ्रांस में तो ऐसा नहीं होता। यहाँ भी नहीं होता था जनाब, तो फिर क्या ये हमारे कदमों की बरकत है? हमीद ने तंजिया हंसी के साथ कहा। कतई बेदस्त पा हूँ जनाब, बेसरोपा बातें ना करो, ये बताओ कि मैं कौन सा दौला हूँ? अभी आप सिर्फ इफ्तिहारुद्दीन हैं, इक्तदारुद्दौला बहादुर के बाद आप इफ्तिहारुद्दौला कहलाएंगे, मजीद लाहौल वाला कुवता। अब आप तो जीना जलाइए, खबरदार जो ऐसी बातें की, तुम ही तो मुझे यहाँ लाए हो। जनाब जनाब, खुदारा मुझे मजीद परेशान न कीजिए, लेकिन मेरी भूख किसी बेवा माँ की तरह झिंझलाकर उस वक़्त यही कह सकता हूँ कि मुझे खा लीजिए। हमीद को हंसी आ गई और समदानी तकदीर का शिकवा करने लगा। इतने में एक छोटी सी कार अंदर से आती दिखाई दी, वो उनके करीब पहुँच कर रुक गयी। एक खूनखार शिकल का आदमी उसे ड्राइव कर रहा था। बैठ जाओ, वो ने घूरता हुआ गुर्राया। वो खुद गाड़ी से नहीं उतरा था। हमीद को उसका अंदाज जारहाना लगा, लेकिन वो पिछली सीट का दरवाजा खोल कर चुपचाप अंदर बैठ गया। लेकिन जब समदानी अगली सीट पर ड्राइवर के करीब बैठने लगा तो उसने गुर्रा कर कहा, तुम भी पीछे जाओ, मैं इसकी जरूरत नहीं कर सकता। क्यों? लेकिन कबल इसके समदानी उस क्यों का जवाब देता, हमीद ने तहकुमाना लहजे में कहा, तुम मेरे पास आ जाओ। बहुत बेहतर जनाब, समदानी हकलाता हुआ पिछली सीट पर आ बैठा। गाड़ी फराटे भरती हुई फाटक से गुजरती चली गई। वाकई हमीद को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी किले में दाखिल हुआ हो। चारों तरफ इमारतों और बागात के सिलसिले बिखरे हुए थे। गाड़ी जिस सड़क पर जा रही थी बहुत सलीके से बनाई गई थी, ऐसा लगता था जैसे पानी पर तैर रही हो। जल्द ही इस सफर का खात्मा हुआ। गाड़ी एक छोटी सी खूबसूरत इमारत के सामने रुक गई थी। ड्राइवर ने इमारत की जानिब हाथ उठाकर कहा, मेहमान खाना। हमीद इस अंदाज़े गुफ्तगु का मतलब बखूबी समझता था। उसने समदानी से उतर चलने को कहा। सख्त तोहीन की जा रही है, समदानी का लहजा गुसीला था। वो दोनों अपने अपने सूटकेस संभाले हुए नीचे उतर गए। ठहरो, ड्राइवर गुर्राया, ये कार्ड लेते जाओ। समदानी ने मुड़कर कार्ड उसके हाथ से झपट लिया था। फिर हमीद ने उससे लेकर देखा, जल्ली हुरूफ में इस पर तहरीर था, मेहमान दुआ गोए दौलत व इकबाल। हद हो गई, समदानी पैर पटक कर बोला। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई थी। हमीद ने समदानी के शाने पर हाथ रखकर कहा, दिमाग ठंडा रखो। उसके बाद वो इमारत की तरफ बढ़े थे। सदर दरवाजे पर उन्हें रोककर कार्ड देखा गया। समदानी का चेहरा सुर्ख हो गया था और हाथ कांप रहे थे। कार्ड देखने वाले ने उन्हें अंदर पहुंचाया। कमरा बहुत सलीके से सजाया गया था। यहाँ दो बिस्तर थे। आप दोनों को इसी कमरे में कयाम करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे कमरे पहले से घिरे हुए हैं, हमराही ने उनसे कहा। अंदाजन कितने मेहमान होंगे? हमीद ने सवाल किया। आपको इससे क्या सरोकार? उसका लहजा अच्छा नहीं था। आई एम सॉरी, हमीद ने माजरत की, क्या आप लोग खाना खा चुके हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर 10 मिनट बाद आपको डाइनिंग रूम में पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बेहतर जनाबे आली, हमीद ने बड़े अदब से कहा। जब वो आदमी चला गया तो समदानी गुस्सीले लहजे में बोला, आपको अपने रुतबे का ख्याल रखना चाहिए। पेट भर लेने के बाद अपने रुतबे के मुतालिक सोचूंगा, हमीद ने लापरवाही से कहा। और समदानी ठंडी सांस लेकर मगमूम लहजे में बोला, काश आपकी तरबियत खुद इक्तदार दौला बहादुर के जेर निगरानी हुई होती। बस खामोश रहो वरना सच मुझ तुम्हें ही खा जाऊंगा। 10 मिनट बाद एक बावर्दी बेरा उन्हें डाइनिंग रूम में ले गया था। खाने के दौरान में हमीद महसूस करता रहा के समदानी जबरदस्ती हलक से नवाले उतार रहा है। खुद उसने खूब डट कर मैदे की तवाजो की और पाइप में तंबाकू भरते हुए वेटर से सवाल किया, क्या खाने के बाद काफी नहीं पेश की जाती? अगर कोई मेहमान फरमाइश करे तो जरूर पेश की जाती है जनाब। तुम बहुत शाइस्ता आदमी हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। खिदमत ही मसलक है, वेटर ने किसी कदर झुक कर कहा। हम खाने के बाद काफी पीने के आदि हैं। अभी पेश की जाती है जनाब, वेटर ने कहा और बर्तन समेट कर चला गया। आप इन बदबख्तों को मुंह न लगाइए जनाब, समदानी ने बहुत बुरा समूह बनाकर कहा। अरे अब तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं अवामी जिंदगी गुजारने का आदी हूँ। मेरी तरबियत जागीरदाराना माहौल में नहीं हुई, अब फिर से आपकी तरबियत करनी पड़ेगी वरना। प्लीज समदानी, बस मुझे बोर ना करो, दफतन वेटर ने आकर इतला दी कि थोड़ी देर बाद काफी बेडरूम ही में सर्व कर दी जाएगी। वो बेडरूम में वापस आ गए और हमीद ने बाथरूम की राह ली। अब उसे इस पैकेट का ध्यान आया था जो चलते वक्त फरीदी ने समदानी से छुपाकर उसके हवाले किया था। बाथरूम में पहुंचकर उसने पैकेट निकाला और उसे खोलने लगा। ओह, उसने तवील सांस ली, ये एक छोटा सा जेबी ट्रांसमीटर था। शिकल सिगरेट लाइटर की सी थी, इसके साथ ही एक तहरीर भी थी, तुम जिस वक्त चाहो इस ट्रांसमीटर पर मुझसे रابطہ कायम कर सकते हो, और बेहतर यही होगा कि खुद ही कुरेद कुरेद कर इस बूढ़े आदमी से इन हालात से मुतालिक मालूमात हासिल करो जिससे इस वक्त दो चार हो। हमीद ने उस पर्चे को नजर आतिश कर देने के बाद ट्रांसमीटर को जेब में डाल लिया और बेडरूम में वापस आ गया। समदानी आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर नींद दराज था, हमीद की आहट पर चौंक कर सीधा हो बैठा। हमीद बिस्तर पर बैठता हुआ बोला, हम सच्चा हुजूर की खिदमत में कब पेश किए जाएंगे? क्या अर्ज करूं जनाब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इन हालात का वहमो गुमान भी नहीं था। साफ साफ बताओ क्या बात है, अब्बा हुजूर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझसे सिर्फ इतना कहा गया था कि फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में एक आदमी मुझे मिलेगा जिसके साथ मुझे सफर करना है। गालिबन इक्तदारुद्दौला बहादुर को पहले ही शुबा था कि कहीं आप इनकार ना कर दें। समदानी ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर मेरा मशवरा शामिल हाल होता तो आप कभी फ्रांस ना जा सकते, आपकी तालीम और तरबियत यही होती। मुझे उलझन में ना डालो प्यारे समदानी, बताओ कि किस किस्म के हालात से मेरा सबका है, ला इल्मी में कहीं कोई ठोकर ना खाऊं। मुनासिब है, जरूरी भी है कि आपको हालात से आगाह कर दिया जाए, और अब तुम इसी तरह आराम से लेट जाओ जैसे पहले लेटे हुए थे। हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल तर्क कर दो वरना दोनों ही तकलीफ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बुढ़ापा बुरी चीज है, समदानी ने कहा और आराम कुर्सी पर नींद दराज हो गया। कुछ देर खामोश रहकर वो फिर बोला, एतमाद दौला और खान दौरान जड़वा भाई थे, दोनों के दरमियान बे इंतहा मोहब्बत थी, हर वक्त साथ रहते थे, ये किला उनकी आबाई जाय रिहाइश थी। उस जमाने में एतमाद दौला सिर्फ एतमादुद्दीन थे और खान दौरान इबादुद्दीन कहलाते थे। उस वक्त उन दोनों के बाप खान दौरान कहलाते थे क्योंकि ये खानदानी खिताब शेरशाह सूरी के जमाने से चला आ रहा था। दोनों भाइयों को शिकार का बेहद शौक था, खुसूसियत से भेड़ियों का शिकार उनकी मरगूब तरीन तफरी थी। वो घोड़ों पर सवार होते और उनके पीछे बेशुमार शिकारी कुत्ते शोर मचाते हुए चलते। मैंने अपने बाप से सुना था कि दूसरी जागीरों में ये दोनों दो दीवानों के नाम से मशहूर थे। टक्कर के लोग इनके नाम से कांपते थे। बहरहाल इस चपकलेश की कहानी भेड़िए के शिकार ही से शुरू हुई है। एक बार ये दोनों झुंड से बिछड़े हुए एक भेड़िए के ताकुब में थे, जो इनके कई कुत्तों को जख्मी कर चुका था। एतमाद दौला का कहना था कि उसे कुत्तों ही से जेर कराया जाए, और खान दौरा को जिद थी कि जैसे ही वो नजर पड़ा वो उसे राइफल का निशाना बना देंगे। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे पर राइफलें तान ली। कोई बीच बचाव कराने वाला भी नहीं था। इसी दौरान में भेड़िया भी झाड़ियों में नजर आ गया और खान दौरा ने अपनी राइफल का रुख उसकी तरफ करके फायर कर दिया। गोली निशाने पर बैठी थी। एतमाद दौला ने खान दौरान पर फायर कर दिया। गोली इत्तेफाकन घोड़े के सर पर लगी। इस तरह खान दौरा ने अपना बचाव कर लिया। दोनों ने झाड़ियों में पोजीशन ले ली थी और उस वक्त तक एक दूसरे पर फायर करते रहे थे जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए थे। उसके बाद शायद दोनों ही को होश आया था और वो दोनों एक दूसरे से मुंह छुपाए हुए जंगलों में भटकते फिरे थे। एतमाद दौला ने फिर कभी इस घड़ी की सूरत ना देखी, जो आज कसरे दौरा कहलाती है। वो काफी अरसे तक इधर उधर भटकते रहने के बाद एक बड़ी रियासत में जा पहुंचे थे। वहां उन्हें हाथों हाथ लिया गया, एक बड़े ओहदे पर फाइज हुए और बाकी जिंदगी में खिताब याफ्ता हो गए। एतमाद दौला कहलाए। ये उस रियासत का सबसे बड़ा एजाज था और सिर्फ शाही खानदान के अफराद ही तक महदूद था। उन दोनों के बाप खान दौरा ने अपनी जिंदगी में बड़ी कोशिश की थी कि दोनों भाई मिल जाएं, लेकिन एतमाद दौला ने तो उन्हें भी शिकल दिखाने से इनकार कर दिया था। माजरत तलब की थी। खान दौरान यानी उनके बाप ने उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपने इस मुतालबे को दोहराना छोड़ दिया था, लेकिन साथ ही ये शर्त लगाई थी कि खास दोनों भाई जिंदगी भर एक दूसरे की शिकल ना देखें, लेकिन वो अपने बच्चों की शादियां आपस ही में करेंगे। बाहर उसी सूरत में कर सकेंगे जब दोनों भाइयों की औलाद में जोड़ ना मिले। लिहाजा तुम्हारे वालिद इक्तदार दौला की शादी तुम्हारे चचा, जो बाप के मरने के बाद खान दौरा कहलाए थे, उनकी बेटी से हुई। तुम्हारे दादा के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए खान जफरयाब की शादी खानदान से बाहर हुई थी। अब ये भी अजीब इत्तेफाक है कि तुम अपने बाप की वाहिद औलाद हो और खान जफरयाब के भी सिर्फ एक ही बेटी है। समदानी खामोश हो गया और हमीद पाइप में तंबाकू भरने लगा। इतने में किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, हमीद ने बुलंद आवाज में कहा और वेटर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जब वो काफी की ट्रे रखकर वापस जाने लगा तो हमीद ने उसे